जय जय श्री राधे जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जान वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय माधव बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना पीरावन प्यारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना की रावण चारी नंदन ब्रज जन रंजन वन चारी जय राधा माधव कुंज जन वल्लभ गिरिवर धारी जय कुंज बिहारी जन वल्लभ गिरिवर यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना की रावण जारी यशोदानंदन रावण चारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की श्रील प्रभुपाद की निताय गौर सीतनाथ प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयेम उदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट किम्। उमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्चाकल्पतरुभ्यस्य कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जयतां सुरतो पङ्गो मम मन्दमतेर्गतिः मत्सर्वस्वपदां भोजो श्रीराधा मदनमोहनो। दिव्यं वृन्दारण्यं कल्पद्रुमाद्य श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा शिलगोविन्ददेवो प्रेष्ठालिभि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भि वंशीवटतटस्थितः कर्षणवेणुस्वनेर्गोपी गोपीनाथ प्रियेस्तु नः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भागवत सत्र तत्सथा प्रेमी वैष्णव का हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भागवत क्रम अनुसार
स्कंद 10 अध्याय 12 श्लोक क्रमांक 28 कृत्यम् किमत्र अस्य खलस्य जीवनम् न वा अमीशां च सतां विहिंसनम् कथं द्वयं कथं स्यात् इति सविचिन्त्य ज्ञात्वा आविशन् तुण्डम् अशेषद्रे हरि कृत्यं किमत्रास्य खलस्य जीवनम् नवामीशां च सतां विहिंसनम् द्वयं कथं स्यात् इति स विचिन्त्य ज्ञात्वा विशत्तुण्डमशेषदृग्हरि कृत्यं किमत्रास्य खलस्य जीवनम् न वायमीशां च सतां विहिंसनम् द्वयं कथं स्यात् इति संविचिन्त्य ज्ञात्वा विशन्तुण्डमशेषदृक्हरि के माता है। कृत्यम किम, क्या किया जाए अत्र इस दशा में, अस्य खलस्य इस ईर्षालु असुर का, जीवनम जीवन न नहीं वा अथवा अमीशाम च तथा निर्दोषों का, सताम भक्तों का, विहिंसनम मृत्यु, द्वयम दोनों कार्य, असुर का वध तथा बालकों की रक्षा, कथम कैसे क्या संभव हो सकता है, इति इति विचिन्त्य इति सविचिन्त्य इस विषय के बारे में भली भांति सोचकर, ज्ञात्वा और यह निश्चय करके कि क्या करना है, अविशद घुस गए, प्रवेश कर गए, तुंडम असुर के मुख में, अशेष दृक हरि कृष्ण जो अपनी असीम शक्ति से भूत वर्तमान तथा भविष्य को जान सकते हैं। अनुवाद एवं तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस कृष्ण कृपा श्रीमद वही शरणार्विंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा, शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद, अब क्या करना होगा, इस असुर का वध और भक्तों का बचाव एक साथ दोनों को किस तरह संपन्न किया जाए। असीम शक्तिशाली होने से श्री कृष्ण ने ऐसी बुद्धिगम्य युक्ति निकल आने तक प्रतीक्षा करने का निश्चय किया, जिसके द्वारा वे बालकों को बचाने के साथ साथ उस असुर का भी वध कर सके। तत्पश्चात वे अजासुर के मुख में प्रवेश कर गए। तात्पर्य, कृष्ण अनंत वीर्य सर्वज्ञ कहे जाते हैं, क्योंकि उन्हें हर बात का ज्ञात है। हर बात पूर्णतया जानने के कारण उनके लिए ऐसी युक्ति ढूंढ लेना कोई कठिन काम न था, जिससे वे बालकों को बचाने के साथ ही असुर को भी मार सकते हैं। इसलिए उन्होंने भी श्री असुर के मुख में घुसने का निश्चय किया। तो श्री व्यास नंदन सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण की पावन लीलाओं का श्रवण करा रहे हैं। अथाघनामा अभगत महासुरम तेषां सुखम क्रीडन भिक्षण क्षम। सुखदेव जी ने कहा कि बच्चे जब यमुना के तट पर कृष्ण के साथ खेल रहे थे अथ उसी समय इसके बाद अघनामा महासुरम अभवत, अघ नाम का महासुर आया प्रकट हुआ। इसमें श्रील प्रभुपाद ने एक छोटी सी बात लिखी है शब्दार्थ में कि खलस्य शब्द है, तो खल शब्द का अर्थ ईर्ष्यालु कहा गया है, जो दूसरों का सुख देख न सके। सुखम वीक्षणम अक्षम, सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित उन सखाओं का और कृष्ण का खेल का सुख इस खल से देखा नहीं गया। यही असुर की परिभाषा है कि उसको दूसरे का सुख सहन नहीं होता, और खास करके इंगित किया जाता है इन सारे मायावादियों को, निर्विशेषवादियों को, जो भक्तों के भक्ति का सुख वो सहन नहीं कर पाते। कि भक्त लोग नाचते हैं गाते हैं और उन लोग को ये सहन नहीं होता है, क्या कर रहे हैं, और वो निंदा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। देखा जाता है ये, जैसे लोक में कोई व्यक्ति गाड़ी बंगला वाला हो जाता है तो दूसरे लोग ईर्ष्या करते हैं, ऐसे इस आध्यात्मिक पथ पर जो भक्त रोमांच कंपाश्र तरंग भाजो तो ये उन लोगों की समझ में नहीं आता, वे लोग ईर्ष्या करते हैं। जैसा नाम था ऐसा ही गुण था, पता नहीं किसने इसका नाम रखा अघ, अघ नाम। अघ शब्द का अर्थ होता है पाप, छोटा नाम है लेकिन बड़ा भयंकर नाम है, ऐसे अनघ होना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी शुद्ध गोस्वामी नैमिषारण्य में शुद्ध गोस्वामी को संबोधन करते हुए शुरुआत में ही ऋषि मुनि कहते अनघ, त्वया खलु पुराणानि इतिहासानि चानघ, आप पाप शून्य हो। मैत्री जी भी विदुर जी को अनघ कहते हैं, परीक्षित भी अनघ है, जो पाप से पूर्णतया मुक्त हो उसे अनघ कहते हैं, लेकिन अकार निकाल दिया जाए तो फिर अघ बचता है, जो पाप से पूर्ण हो अघ नामा। तो नामा भी नहीं, काम भी ऐसा ही था इनका, अघ नाम था ऐसा ही काम था। क्यों? क्योंकि बकी बका अनुज, वो बकी और बक का भाई था, अनुज था, तो पैतृक परंपरा से कुछ संस्कार लेकर ही आया था। ऐसे होता है ना, माता पिता के कुल परिवार के कुछ संस्कार स्वाभाविक होते हैं, तो ये प्रभु जी लेकर ही आए थे। आप कहे प्रभु जी क्यों कह रहे असुर को, वृंदावन आए ना, कैसे भी वृंदावन में आता है तो कुछ तो है उसमें, वो कृष्ण लीला का दर्शन कर रहा है। और उसमें उसको पता था कि मेरी बहन पहले यहां आई थी, ओपनिंग तो बहन ने ही किया, ये विनाशाय च दुष्कृता तो बकी से ही हुआ ना कृष्ण का, और फिर बक आया, तो दोनों को इसने मार दिया। इसको ऐसे समझना चाहिए, यद गत्वा न निवर्तन्ते, ये धाम वो है कि यहां आकर कोई वापस नहीं जाएगा, फिर और भौतिक संसार में तो जाएगा ही नहीं, मुक्ति है वो, फिर वो मुक्ति हो मुक्त हो जाता है। तो ये इसका भाई था, बकी बका अनुज। सुखदेव गोस्वामी इसका नामकरण कर रहे हैं और फिर इसका कुछ संबंध बता रहे हैं, जिससे इसका कर्म स्वाभाविक है। तो अगर कोई कुल में निम्न कुल में आया है, असुर कुल में आया है, तो ऐसे ही ईर्ष्यालु स्वभाव होता है, भोग प्रवृत्ति होता है। फिर भी एक चांस है, अगर उसकी संगति किसी अच्छे व्यक्ति से हो जाए तो कुछ सुधरने का चांस है। लेकिन कंसाध्याय और संगति भी कंस का कर रहा, फॉलो किसको करता था अपने जीवन में ये अघ, तो सुखदेव जी कहते कंस को फॉलो करता था, असुर को। अब तो ये भी चांस गया, इसीलिए इनका कर्म ऐसा हो गया था कि सुखा वह वीक्षण अक्षम, दूसरे का सुख देखा नहीं जाता। देखो एक प्रसिद्ध श्लोक श्रीमद् भागवत का है, जिसको सुनकर सुखदेव जी ब्रह्मलीन साधु ब्रह्म समाधि त्याग कर कथा के प्रेमी हो गए, और उसमें अहो बकीयम स्तनकालकूटम, तो वहां पर पूतना को बकी कहा गया है, इसको बका अनुज कहा गया है। बहन को, बहन का नाम पूतना है, इसका नाम अध है, लेकिन इनके कर्मों का, इनके मनोबुद्धि विचार का वर्णन करने के लिए शालीन साधु सुखदेव जो समाधि भाषा भागवत बोल रहे हैं, तो विद्वान पुरुष का लक्षण होता है कि वो बहुत सारी बातें संक्षेप में कह देते हैं। ये विद्वत वाक्य का यही सार है कि वो बहुत कुछ होता है वो सार में हो जाए। ऐसे इतने सारे वेद पुराण है, वेद पुराण इतिहासानाम सारम सारम समृद्ध, ये सार है उसका भी श्रीमद भागवत। और इसका प्रवचन सुखदेव जी कर रहे हैं, इसका तात्पर्य क्या है? भागवत की मूल परंपरा पर आप विचार करें, एक एक दृष्टि से भागवत 2752 आप देख सकते हो इस श्लोक को, कि जब ब्रह्मा जी से भगवान विष्णु, विष्णु के द्वारा ब्रह्मा जी ने जब यह चतुश्लोकी भागवत सुना नारद जी को, नारद ब्रह्म संवाद द्वितीय स्कंद के 7वें अध्याय में, और वहां पर ब्रह्मा जी कहते हैं 51 नंबर श्लोक में, 2751 उसमें वो कहते हैं इदम भागवतम नामम, ये जो भागवत नामम पुराण ग्रंथ है, यन्मे भगवतो उदितम, जो भगवान ने मुझे कहा है, संग्रहो विभूति नाम, ये भगवान कृष्ण की विभूति है एक रूप से, एक से साक्षात है लेकिन विभूति भी है, विभूति में भी साक्षात का वर्णन होता है, जैसे गीता के 10वें अध्याय विभूति योग में भगवान विभूति गिनाते हैं, तो अपने आप को भी गिनाते हैं, वृष्णि नाम वासुदेव अस्मि, वो साक्षात है लेकिन विभूति भी, विभूति के अंदर भी कोई विभू विभूति में अंश अंशांश जैसा है। तो ये भगवान की विभूति है, तो हम ये तो विपुलिम करो, इसलिए हे नारद तुम इसका विस्तार कर सकते हो, तुम भी विभूति हो, समर्थ हो, देवर्षि नाम से नारद भगवत गीता। और उसके बाद कहते हैं कि मानो नारद जी पूछे कि ये भगवान के द्वारा पिताजी आपको दिया हुआ श्रीमद् भागवत जिसको आप मुझे विस्तार करने को कह रहे हो, प्रवचन करने को कह रहे हो, इसका प्रचार करने को कह रहे हो, हेतु क्या है, ये भागवत के प्रचार का रीजन, कारण क्या है, क्यों करना है? तब कहते यथा हरो भगवती निणाम भक्ति भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प वर्णय, यही है ना मूल मात्र है जो। और कहते हैं कि यथा हरो भगवती निणाम भक्ति भविष्यति, निणाम मनुष्याणाम भगवान हरो, भगवान श्री हरि की भक्ति हो जाए, इति संकल्प, इस संकल्प के साथ इसका प्रचार करना है, अन्य कोई हेतु नहीं है भागवत का। भागवत का हेतु है भक्ति वर्धन, चाहे वक्ता हो चाहे श्रोता हो, सबके लिए, कृष्णार्थी है, कृष्ण प्रेमार्थ भागवत प्रवचन, न तो अन्य मोक्षाय प्रतिष्ठाय धनार्थे, ये सब कली प्रभाव, ये सब कलयुग का चेला हो गया, ये अगर इसलिए कर रहा है, कृष्ण का चेला है और वो भागवत कह रहा है, कृष्ण दास अगर भागवत, तो उसका क्या हेतु है? स्वयं अपने में और श्रोता जने हरिम भक्ति भविष्य, भगवान की भक्ति उसे प्राप्त हो जाए, इसलिए कहा गया है। इसलिए उस पुतना प्रसंग की समाप्ति पर सुखदेव जी ने यही आशीर्वाद दिया, श्रृणवताम श्रद्धया मर्त्यो गोविंदम लभते रति। मैं ये प्रसंग परीक्षित तुमको कह रहा हूं, इसको जो भी श्रद्धा से सुनेगा उसमें भगवान श्री गोविंद के चरणों में रति प्राप्त होगा, भक्ति प्राप्त होगा, ये सब भी मिल जाएगा, यश प्रतिष्ठा धन आदि, ये सब गौण है, वो भी अपने आप होता ही है, मिलता है, लेकिन प्रयोजन ये नहीं है, प्रयोजन है प्रेम। जय श्री राधा की, जगन्नाथ गोविंद सुभद्रा जी की। मायां वर्णयते मुष्यम ईश्वरस्य अनुमोदितं श्रृण्वतां श्रद्धयां नित्यं माययात्मानं मुह्यति। ब्रह्मा जी कह रहे हैं दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय का अंतिम श्लोक, भागवत के श्रोताओं के लिए बड़ा बड़ा आश्वासनीय उत्साहवर्धक बात ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। हमारे संप्रदाय के आदि ब्रह्म मध्व है ना हम लोग, तो हमारे आदि आचार्य क्या कह रहे हैं भागवत के विषय में, भागवत के श्रोताओं को या उनके प्रचारकों को, श्रृणवताम, अगर कोई इसको सुनता है श्रद्धयाम, श्रद्धापूर्वक नित्यम हर रोज, तो वो माया, वो आत्मा माया के द्वारा मोहित, जो माया दुरतिया है गीता के अनुसार, मम माया, बड़े बड़े देव ऋषि दानव उसको पार नहीं पा सकते उस माधव की माया को, लेकिन जो भागवत की कथा का आश्रय लेगा, माया न मुह्यति, माया के द्वारा वो मोहित नहीं होगा। जैसे गीता में धीरस तत्र न मुह्यति, धीर पुरुष मोहित नहीं होता, लेकिन वो धीर मोहित नहीं होता, मोहित तो हो ही जाते हैं, प्रवचन करने वाले की दशा भी आप देखिए। लेकिन भागवत की कथा का कोई आश्रय लेगा तो ब्रह्मा जी कहते स आत्मा श्रृणवता, अगर सुनता है नित्यम हर रोज और श्रद्धा के साथ, श्रद्धा शब्द का अर्थ होता है विश्वास के साथ, आदर के साथ। इस प्रसंग में विश्वास बताया गया है, कल के श्लोक में आया होगा कि नेयम यदा चेत बकवत विनश्यति अस्मान ग्रसिता निविष्टान, अगर ये हमको ग्रस लेगा ना तो चेत तो भी चिंता क्या है, बकवत जैसे वो बकासुर मारा गया था ऐसे ये भी मारा जाएगा, क्षणानन्यति बकार युषन हसन, क्षण में मारा जाएगा। और इस प्रकार सोचते हुए वो बच्चे सुखदेव जी कहते हैं कि बकारी उषण मुकम, जो बक के हरी मतलब कृष्ण का नाम है, बक के शत्रु, बकारी उषण मुकम उसके सरोज मुख मुखमंडल को देखते हुए, विक्षद हसंतम हंसते हुए, करताड़ में ताली बजाते हुए, येयु मुख में चले गए, ताली बजाते हुए हंसते हुए कोई चिंता नहीं। क्यों? अगर कोई कहे रुको रुको सचमुच में सांप होगा तो, क्योंकि देखो लग रहा है कि सांप ही है, अरे सांप होगा तो क्या चिंता है, वो बकारी भी इधर ही है ना। अभी गीता बोला नहीं है विनाशाय च दुष्कृताम, लेकिन यही करेगा वो, चिंता क्या है। मतलब भक्ति मतलब विश्वास, श्रद्धा शब्द विश्वास, महाप्रभु गौरांग के वाक्य है ना, विश्वास भगवान पर, विश्वास भगवान की भक्ति पर, विश्वास भक्ति शास्त्र गीता भागवत पर, विश्वास गीता भागवत पर विश्वास मतलब उसके श्लोकों में विश्वास, इसका इसका महत्व है। भक्ति का प्राण तो यही है विश्वास। साधारण लोगों पर भी विश्वास होता है। महात्मा लोग एक दृष्टांत सुनाते हैं कि एक एक व्यक्ति, एक पुलिस ऑफिसर अपने छुट्टियों के समय में गन लेकर अपनी पत्नी के साथ जहाज में कहीं पिकनिक के लिए जा रहा है और अचानक समुद्र में तूफान आंधी चल गई तो जहाज डूबने लगा, तो कैप्टन ने अनाउंस किया कि अभी ये आउट ऑफ कंट्रोल है, कुछ नहीं हो सकता, सब अपने अपने इष्ट को याद करो। ये अंत बेला में भगवान याद आते हैं, क्योंकि लोग ये जानते नहीं है, ऐसे मानते हैं कुछ कुछ लेकिन पूर्ण तो जानते नहीं है कि जो इष्ट को याद करता है उसका अनिष्ट नहीं होता। इसीलिए राधा गिरिधर का नित्य स्मरण होना चाहिए, हमारा इष्ट है ये, इष्ट मतलब हमारा हित करने वाले, सुयदम सर्वभूतानां, हमारे प्राण आराध्य है, पूजनीय है। अपने अपने इष्ट को याद करो, मरोगे कुछ ही समय में, कुछ नहीं हो सकता, सब जो जो मानता था लगा करने, लेकिन ये कैप्टन जो बंदूक लिए हुए था वो जोर जोर से नाचने लगा। सब लोग सीरियस थे, गंभीर थे, मृत्यु के समाचार पर आप जानते हैं ना क्या दशा होती है सबकी, और ये हाथ उठाकर बंदूक हाथ में लिए नाच रहा है। लोगों ने कहा क्या पागल हो गया है कि क्या है, इसका दिमाग ठिकाने नहीं है क्या। उसकी पत्नी भी बाजू में थी, वो भी सोच रही इसके बाद क्या हो गया, क्या पी लिया क्या, ऐसे इसको दिन में कैसे नशा चढ़ गया, क्यों नाच रहा है, वो भी उसको पूछ रही है। सब आश्चर्य में है, बोले पागल समझ रहे इसको। तो इसने साहस किया कि शांत हो जाए, मरने वाले हैं पर आप नाच क्यों रहे, आनंद में क्यों आ गए। उसने कहा तू भी नाच मेरे साथ। अरे अरे सब देख रहे हैं, हमारा हंसी हो रहा है और अभी अंतिम बेला है, अभी जहाज डूबने वाला है और आप इस तरह कर रहे हैं। तो उसने सबके सामने देखते हुए बंदूक जो उठाकर नाच रहा था पत्नी के सर पर लगा दिया, बोले चुप रहे, तो अब भी फिगर टिगर डाला दूंगा, मार डालूंगा तेरे को। तो पत्नी हंस रही, हे मजाक मत करो। तो मजाक नहीं कर रहा हूं, सीरियस हूं। अभी चुप नहीं बैठे ना, अभी सिगरेट उड़ा दूंगा तेरे को।
तो और हंस रही है, अरे चलो ऐसे बंदूक को हाथ अपने हाथ से झटका रही है, अरे चलो मस्ती मत करो अभी इतना सीरियस समय, मजाक कर। बोला ना मजाक नहीं कर रहा हूं। सब लोग जो माला गंभीर कर रहे थे सब ध्यान, वो भी इनको देखने लगे, इन दोनों को क्या हो गया। और वो हंस रही थी, तो उसके पति ने पूछा कि मैं इतना सीरियस हूं, अभी मार दूंगा, इतना क्रोध कर रहा हूं, फिर भी तू मजाक समझ रही है और आनंद में है। बोले हाँ मुझे विश्वास है कि तुम मेरे पति हो, कभी नहीं मारोगे। बोले हार्ड चर्म के पति पर विश्वास है, तो मेरा पति तो सच्चिदानंद श्री कृष्ण है, उस पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो मजाक करता है, मारता नहीं। अवश्य रक्षति दे कृष्ण विश्वास पालन। अगर मारे कृष्ण के राखे, और अगर कृष्ण किसी को रखना चाहते तो विश्व ब्रह्मांड की कौन ऐसी शक्ति है जो हमको मार सकती है। तो मुझे मेरे ठाकुर पर, मेरे इष्ट पर विश्वास है, इसलिए प्रत्येक अवस्था में मार भी राख भी जो इच्छा तुहारा, तो या दास प्रति तो वह अधिकारा। भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि हमको विश्वास है। तो शरणागति के लक्षण के अंतर्गत भक्तिनाथ ठाकुर ने यही पद गाया है, जो जो संस्कृत अवश्य रक्षिबे वाली बात को, वो सधाम अवतरी जो भजन है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, सब पार्षद सधाम सी अवतरी, और सिखाए शरणागति भगते रप, भक्तों को यही सिखाने आए थे। अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन, यही भक्ति है। ये भगवान के प्रेमी सखाओं में देखा गया है, दिखाया गया है। और याद रखिएगा आप वैष्णव लोग कि ये भगवान के सखा है, भगवान के समान है, उनके स्वरूप शक्ति के विलास है। कोई देवता कोई दानव इन सखाओं का कुछ भी अनिष्ट नहीं कर सकता, ये तो सब भगवान की योग माया का प्रभाव है। इसलिए यथाग नामा की तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने विश्वनाथ चौधरी ठाकुर को याद किया है कि इस तरह भगवान के सखा यमुना के तट पर आनंद कर रहे, ब्रेकफास्ट कर रहे, नाच रहे, खेल रहे, और कोई ना कोई असुर आ जाता है और कथा और लीला में विघ्न डालता है। कैसे समझे इसको? भगवान की योग माया चाहती है, क्योंकि सखा खेलने में इतने मस्त है कि भोजन करना भी भूल जाते हैं। तो कोई ना कोई आएगा तो ब्रेक होगा, तो फिर ब्रेकफास्ट होगा, मतलब इंटर होगा, इंटरवल होगा। तो ऐसे होता है ना ड्रामा में, इंटरवल होता है तो जो उसमें पार्ट लिए होते हो अंदर जाकर, हम लोग ठीकों को पता है, आप समझ सकते हो इसको, अंदर जाके कुछ तगड़ा हो जाता है, कुछ नाश्ता होता है, फिर क्या रोल है बताओ भाई, चलो ये नेचुरल भगवान की नित्य लीला है, भगवान की योग माया अरेंजमेंट करती है। ये तो कोई सखा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई देवता भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो असुर क्या बिगाड़ सकते, लेकिन भगवान की ये लीला है। और इसीलिए श्रीधर स्वामी इस श्लोक की टीका में एक शब्द देते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा आगे, सुना है लेकिन इसका स्मरण रखना चाहिए हम वैष्णव को, कि पित्वा अमृते पी अमरे प्रतीक्षते, तेरहवे श्लोक में अथाग नामा, जहां पर अघासुर एंटर हुआ इस वृंदावन में लीला में, तो उसकी अंतिम लाइन में सुखदेव जी कहते अमरे अमृतम पित्वा अपि प्रतीक्षते किम मर, ये अमर अमर लोग जो अमृत पीते हैं देवता लोग, उसको अमर अमरगण कहते हैं, वो प्रतीक्षते, वो प्रतीक्षा करते कि ये कब मरेगा। इतना आतंक मचाया था ये कि देवता भी इनसे कांपते थे, तो मनुष्य की क्या कहा जाए, पशु पक्षियों के विषय में क्या कहना वृंदावन के। देवता भी इसकी वेट करते थे कि रोज मिन्नतें करते थे, व्रत करते थे कि ये कब मरेगा। क्या कैरेक्टर डेवलप किया था वहां पर, सब लोग प्रार्थना, कभी कभी होते ना कुछ ऐसे व्यक्ति होते इसके लिए प्रार्थना की जाती कि इनका दर्शन न हो, दूर रहे, ये न मिले, ऐसे ऐसे कैरेक्टर होते हैं ये लोग। ये अपना पर्सनालिटी ऐसे डेवलप किया था कि देवता लोग भी वेट करते थे कि कब मरेगा ये, प्रार्थना करते रहते थे, प्रतीक्षते। तो अमरे अमृत अमरम पृत्वा, अमृत पीते हुए देवता ये प्रार्थना करते थे। उसकी टीका में श्रीधर स्वामी लिखते हैं एक बड़ी मधुर बात हम वैष्णवों को के लिए, कि ना अमृतम पानिनम जीवन सफलति सफलम भवति किंतु भगवत लीला स्मरणेन इति। देखिए ये देवता कह रहे हैं और सुखदेव जी गंगा तट पर कह रहे हैं देवताओं के विचार को, कि जीवन में स्वर्ग पाकर, अप्सरा पाकर, अमृत पीने में भी जीवन की सफलता नहीं है, जीवन की सफलता है भगवान की लीला का चिंतन करने में, स्मरण करने में। कितनी ऊंची बात बताई जा रही है। इस बार अभी कुछ दिनों पहले गंगा तट पर परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज ने इसी कथा को कहा, अधा सुरु उद्धार को, वो भी इसी बात को पहले दिन बोल रहे थे महाराज, पहले दिन के द्वितीय सत्र में। अथा जनामा पीतवा अमरे पी, अमर लोग अमृत पीते हुए भी प्रतीक्षते, प्रार्थना करते रहते हैं, और वो कृष्ण लीला का अवलोकन करने के लिए, दर्शन करने के लिए नित्य आते रहते हैं, और फिर विचार करते हैं कि हमारा भी ऐसा सौभाग्य नहीं है। लीला में तो सौभाग्य नहीं है, लेकिन लीला की कथा जहां होती है, सुखदेव जी जहां गा रहे हैं, वहां पर भी सौभाग्य नहीं। तब वो कहते ठीक है, हमारा जीवन बेकार है, अमृत पानेनम जीवनम सफलम न भवती, जीवन सफल नहीं है। किंतु तो कहते जीवन की सफलता है, सार्थकता है, तो कहते भगवत लीला स्मरणे नहीं थी। जो अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करता है, श्रवण करता है, कीर्तन करता है, उसका जीवन सफल है। ये देवता लोग कह रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने हम लोगों को क्या दिया, इस पर आप विचार करिए। जो ऋषि मुनियों का तपो तपस्वी मनस्वियों का महाधन है श्री कृष्ण लीला चिंतन, तात्पर्य लिख लिख कर समझा समझा कर हमारे सामने ये भागवत रखा है। इसका हम आचार्य ने कितना बड़ा उपकार मानव समाज पर, विशेषकर वैष्णव समाज पर, इस भक्तिवेदांत स्वामी ने किया है। सब बना बनाया हलवा पिरसा है हमारा, केवल केवल खाना है बस इसको, है ना। होता है ना कोई खीर स्वीट राइस बना के रखा है, बस आपको केवल आइए आप आहार करिए बस। नित्यम भागवत सेविया, इसलिए इसका सेवन करना है हमको, इसके श्लोकों के शब्दों पर विचार करना है। विचारण परो भक्त्या विमुच्यते नर, भागवत के ये श्लोक भगवान के स्वरूप है, उनके स्वभाव का, उनकी उनके स्वरूप ऐश्वर्य का इसमें पूर्ण निरूपण है। हमारे गोस्वामी ने, आचार्यों ने जीवन लगा दिया इस भागवत के शब्दों पर। नाना शास्त्र विचार अनेक निपुणों, विचार कर करके, चिंतन करके, इसलिए कुछ समय अपने जीवन में स्थिर बुद्धि सत्व गुण में आकर भागवत के इन तात्पर्य को, भगवान के इन श्लोकों को सुनना है, गाना है, इस पर चिंतन करना है। ठीक है, हम लोग नित्यम भागवत सुनते कहते हैं, लेकिन औपचारिकता नहीं है, ये महत्वपूर्णता है, ये फॉर्मेलिटी नहीं है केवल। अगर कोई भक्ति के अग्र उच्च शिखर पर पहुंचना चाहता है भक्ति मार्ग में, प्रेम तत्व पर शीघ्रता से, तो प्रेमा पुमर्थो महान, गौरांग चैतन्य के शब्द है भागवत के विषय में, इसीलिए बड़ी महत्वपूर्ण देनी है। हम बात बता रहे थे अखो बकीयम तत्, सुखदेव जी जिस पर मंत्र मुग्ध हो गए, तो वहां पर पुतना नाम नहीं दिया गया, बकी क्यों कहा गया? वहां पर भी गुण बताया गया कि ये बकी आई है, स्तन काल, स्तन में दूध नहीं है, विष लेकर आई है। कौन आई है? बकी। बकी मतलब बकासुर की बहन, उसका नाम नहीं था बकी, ये विशेषण था। नाम तो पुतना था, पुतना भी एक जातिवाचक दिख दिया गया है। नाम तो पता नहीं क्या था, खेचरी था कि आकाश में उड़ती थी इसलिए खेचरी। बाल घातिनी, ये सब शब्द दिए गए ना पुतना प्रसंग में, तब बताया गया कि ये बकी है, मतलब बकासुर। कितना बगुला आप जानते हैं ना, कपट का प्रतीक माना जाता है बक। बक जानते हैं ना, एक पैर पर खड़ा होता है, ऐसा समाधि लगाता है कि लगता है कि हिमालय में यही साधु सर्वश्रेष्ठ है। एकदम उज्जवल होता है, व्हाइट होता है। और बको ध्यानम, ऐसे विद्यार्थियों के लिए भी चाणक्य में जब भगवत लीला का या विषय का सब्जेक्ट का चिंतन कर ध्यान लगाने को कहा, तो बक की तरह लगा हो। स्वान निद्रा बको धानम, विद्यार्थियों को स्वान की तरह निद्रा होना, तुरंत जग जाता है। स्वान आप देखे ना, कुत्ता जगता ही सोता है। जिसकी नाक में से आवाज आती है दूसरे को भी सोने नहीं देते, ऐसा भगत कभी प्रगति नहीं कर सकता। स्वान निद्रा है, जिसको जिसको विद्या ग्रहण करनी है, क्षणम एक क्षण भी वो व्यर्थ नहीं गवाता, बढ़िया से मस्ती में सोता है, उनके लिए तो क्या कहना है। उसके लिए भी साधु सद्गुण देख सकता है कि वाह कितना ठाकुर पर विश्वास है, आराम से सो, विश्वास होता है तभी सो पाता है, नहीं तो व्यक्ति सो भी नहीं पाता। जब नींद आराम की होती है, जब टेंशन होता है तभी होती है ना। व्यास भरोसे कुबरी के सोवत तार पैर पसार, वृंदावन के साधु हो गए एक व्यास मुनि करके, बहुत सुंदर सुंदर भजन उन्होंने लिखा है वैष्णव आचार्यों में माने जाते थे। तो कहते थे दुनिया को जो करना है करे, तप करे, व्रत करे, हमको हमारे इष्ट बांके बिहारी पर विश्वास है, और कोई चिंता नहीं, जो करे सो वो करे। तो ये एक अलग बात है और अज्ञान अलग बात है। परिस्थिति सेम होती है मोह की और प्रेम की, रोमांच रोमांच कंपु अश्रु सेम, लेकिन चित्त की वैधानिक स्थिति पर क्या असर, क्या विशेषता है, उस पर विचार होता है। भगवान श्री रामचंद्र भी जब गए पंपा सरोवर पर, वाल्मीकि रामायण में कथा है, तो वहां पर एक बगुला था और एक पैर लगाकर उस पंपा सरोवर जानते हैं ना, हम्पी में है, आज भी है, जहां सबरी का तपस्थल मतंग का आश्रम है। तो वहां पर एक बगला था जो एक पैर पे खड़ा रहकर खड़ा था। भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण देखो ये बगला कितना सुंदर ध्यान कर रहा है। तो लक्ष्मण जी ने कहा, वाह प्रभु, आप भी हमसे पूछ रहे हैं, बगला कितना साधु है, वो तो बेचारी मछलियों को पूछे जो अंदर अंदर नीचे खड़ी है। लक्ष्मण पश्य बकोयम पंपाया सरोवरे, देखो लक्ष्मण देखो ये बगला कितना सुंदर तप कर रहा है, ध्यान कर रहा है इस पंपा के तट पर। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि अब भी पता चलेगा कि इसका ध्यान क्यों हो रहा है, और क्यों ध्यान कर रहा है इसका वास्तविक अनुभव। आप भैया, बड़े भैया, आप साधु हो ना, इसलिए सब में क्या देखते हो, साधु का दृष्टि सर्वत्र साधु ही देखता है, सदगुण ही देखता है। लेकिन लखन जी कहते हैं कि आपको लग रहा है ना ये बकमाशय का प्लान साधुता, अभी पता चलेगा कि ये जब तब क्यों करता है। वो कपटी माना जाता है, तो ये कपटी की बहन है, इसलिए भाई से ये सदगुण लेके आई है दुर्गुण, इसलिए ये भी कपट करने आई है। पूतना की कपटता का परिचय देने के लिए बकी कहा गया, क्योंकि बक कुछ भी करता है वो कपट होता है, और इसकी बहन है। इसलिए रामायण में भी जब शूर्पणखा पंचवटी में आई, तो रामायणकार ने इसका क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन दिया, अहो शूर्पणखा रावण की बहन। कौन आई है, तो शूर्पणखा का नाम है, लेकिन दिया कि ये रावण की बहन है, मतलब भाई के सद कुछ नेचर कैच करके आई है, पकड़ के आई है। ये मैं ये कह रहा हूं कि विद्वान वैष्णव की जो बोलने की विधि होती है उसमें कुछ छुपा हुआ होता है। जैसे यहां पर बकी कहा जा रहा है, मतलब बक का बहन है, वो बक में कपट है, तो इसमें भी कपट है, वो ध्यान करता है वो हिंसा के लिए, ये भी दूध लगा के आई है। लेकिन अब ये कौन आया है, इन दोनों का अनुज आया है जो अब प्रभु पधारे है वृंदावन में, यात्रा के लिए नहीं आया है। वृंदावन भक्त लोग जाते हैं तो कुछ तीर्थ धाम हो जाए, मथुरा वास, श्रद्धा सेवन, पंच महासाधन, ये किस लिए पधारे हैं अघासुर जी? ये कोई यात्रा के लिए नहीं पधारे, ना कोई दर्शन के लिए पधारे। इनका विचार है कि मैं अपने भाई और बहन का बदला लूंगा, असुर है ना, इसको मारूंगा, और इसलिए बड़ा मुंह करके बड़े आकार में फैला के बैठा है। लेकिन बच्चे तो बच्चे है ना, भगवान श्री कृष्ण के सखा है, वो देख रहे, बातें भी कर रहे कि हाँ लगता है बिल्कुल सांप जैसा है। दूसरा कहता, हाँ देखो देखो जीवा भी बिल्कुल सांप के, वो असली सांप ही था, लेकिन ये लोग लीला शक्ति के अभिनिवेश में, चक्रवर्ती बात कहते कि भगवत लीला लीला का इतना इसके ऊपर प्रभाव था कि ये लोग बस ऐसे ही सोच रहे थे। और इसीलिए एक गुण हो गया इन लोगों का, सखाओं का। सुखदेव जी कहते, देखिए भागवत के छोटे शब्द है, इस पर विचार बड़ा बड़ा हमको करना है। वो कहते हैं कि बकारी उषण मुखम, उस बकारी के मुख को देखते हुए ययु प्रवेश किए। कुछ भी हो, सखा पाप के मुख में जा रहा, अग मतलब पाप, और पाप के प्रमुख पुंज था ये, वकासुर क्या था, ये कृत पुण्य पुंज इसके विषय में है, और ये पाप पुंज है, और ये पाप में प्रवेश करने जा रहे हैं। लेकिन फिर भी एक सौभाग्य था कि कृष्ण को देखते हुए जा। तो एक आचार्य लिखते हैं कि संसार में भी यही होता है, लोग भक्ति करते हुए भी पाप करते हैं, अपि चेत सुदुरा। हम लोग हैं ना, जैसे अब कृष्ण को देखते हुए मतलब भक्ति की ओर दृष्टि है, हरि नाम हो रहा है, सेवा हो रही है, लेकिन फिर भी कुछ पूर्व जन्म प्रभाव वश, संस्कार वश, स्वभाव वश, या फिर प्रकृति के गुणों के प्रभाव में पाप तो हो ही रहा है। कृष्ण भजन भी हो रहा है, भोग भी हो रहा है, द्वयम दोनों चल रहा है। जैसे यहां सखा कृष्ण को देख रहे हैं और जा रहे हैं पाप में, वो लीला है लेकिन संकेत है, यहां शिक्षा है, वो कोई पाप में नहीं जा रहा, कृष्ण के सखा को पाप छू भी नहीं सकता, लेकिन अग पाप का पुंज है, असुर है, तो इसकी उपमा इस तरह दी जाती है कि बच्चे कृष्ण मुख देखते हुए भी पाप में जा रहे हैं। पाप मतलब संसार प्रवृत्ति, कृष्ण प्रीति के अलावा जो भी कर्म है उसको चाहे कुछ भी धर्म कर्म आप बोल दो, वो अंततः पाप में ही परिणित हो जाएगा, याद रखिएगा इसे। कृष्ण प्रीति अर्थ है अगर हमारी कृष्ण संतुष्टि के अलावा कुछ भी कर्म हम जिसको हम धर्म का नाम दे दे, वर्णाश्रम का कि इसका इसका किसी का भी, इसलिए गीता में ठाकुर को बोलना पड़ा अंत में सर्व धर्मान, अधर्मान नहीं, अरे धर्म की संस्थापन अर्थ है, और धर्म तेजो की बात कर रहे हो, कृष्ण का अवतार क्यों हुआ, धर्म की स्थापना के लिए, और प्रवचन क्या कर रहे हो, सब धर्मों को छोड़ो, अधर्म को छोड़ने को बोलना चाहिए, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं उसके अलावा कुछ भी करोगे उसको तुम धर्म मान रहे हो, वो भी अंततः अधर्म है, अधर्म ही हो जाएगा वो, धर्म तो साक्षात मैं जो बोलता हूं वो धर्म है, और मैं कह रहा हूं कि मेरी शरण में आओ तो ये परम धर्म है, और इस परम धर्म के लिए नैमित्तिक धर्म, नित्य धर्म के लिए, जैव धर्म के लिए, सनातन भागवत धर्म के लिए नैमित्तिक धर्म त्यागा जा सकता है, जो निमित्त है कुछ काल के लिए शरीर है संबंध है तो शरीर का संबंध के अनुसार धर्म होता है, आत्मा का धर्म नहीं है जिसको हम मान रहे पति या देशवासी या कुछ भी अब लगा चुके हैं। ये संक्षेप में हम बड़ी बात हायर बोल रहे हैं जो आचार्यों ने लिखी है इस प्रसंग में, समझने का प्रयास करना चाहिए, और इसके लिए भी जो खूब मंत्र जपेगा, महामंत्र महाप्रसाद भक्तों का सेवा करेगा, उसकी बुद्धि और हृदय शुद्ध होता है तब ये बात समझ में आती है, नहीं तो शास्त्र को रटकर भी लोग आज भी अब नहीं समझे हैं। यथा खर चंदन भारवाही भारस्य वेता न तो चंदनस्य, मद भक्ति ही न श्रुति शास्त्र विप्रा, शास्त्र का जानने वाले बोझा उठाने वाले ब्राह्मण लोग भी मेरी भक्ति नहीं करते, खर वह वदंती गधे की जैसा शास्त्र का भार उठा रहे, गधे के ऊपर आप चंदन का बोझा लगा दो लकड़ी का तो उसको बोझा का तो अनुभव है, 100 किलो है या 50 मन है या कल से ज्यादा है कि थोड़ा कम है, लेकिन चंदन का मूल्य क्या है वो गधे को पता नहीं। ऐसे कितने श्लोक ये स्मार्ट लोग रटते रहते हैं लेकिन श्लोकों का सार है वेदांत कृत वेद विदेह चाहम, वेद मैं बनाया हूं और वेद के द्वारा जानने का तात्पर्य मैं हूं अर्जुन, ये कृष्ण तत्व तक नहीं पहुंच पाते। बहु नाम जन्म नामंते ब्रह्मांड भ्रमिते, हो जाएगा फिर कभी कभी, तो श्लोक पता है शास्त्र पता है लेकिन भक्ति नहीं पता, शरणागति नहीं मान, और उसी को लोग धर्म मान रहे हैं, इसलिए कृष्ण को अंत में कहना पड़ा सर्वधर्मान परित्यज्य, कृष्ण का मुख देखते हुए जा रहे, याद रखिएगा हम भी संसार में है प्रवृत्ति में है, प्रवृत्ति धर्म निभा रहे हैं, कर्तव्य के नाते कुछ जानते हैं जानते पाप होते ही है, पाप करने की प्रवृत्ति है, फिर भी एक सखाओं से सीखिए कि ठाकुर जी का हमारे इष्ट गिरधारी का मुख दर्शन करते हुए जाइए, रक्षा वो करेगा। आप संसार में जाओ, भक्तिनाथ ठाकुर ने इसको कहा है कि नामाश्रय करी यतने तुमी थाकह आपन काजे, उदिल अरुण पूरव भागे, उस भजन की लाइन है कि आप नाम का आश्रय करिए, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, और फिर आप अपना कर्तव्य निभाइए जो भी है, लेकिन नाम को छोड़कर नहीं, हरि नाम का आश्रय छोड़कर नहीं। कितनी बड़ी प्रेरणा मिल रही कि गिरधारी के दर्शन करके जाइए, ये सखा पाप के मुख में जा रहे थे, वो अजानते जा रहे थे, वो नहीं जानते थे कि अजगर है, ऐसे कुछ भक्त लोग हम लोग भी ऐसी बीमार अवस्था में है कि हम पाप अच्छा समझकर करते हैं, पाप है ऐसा पूर्ण पता होता तो नहीं करते, अनिच्छन भी वास्तव में बला, कभी कभी हो जाए तो इच्छा नहीं होने पर भी पाप होता है ना, अर्जुन पूछता है गीता में, कभी कभी पता होकर भी भोग प्रवृत्ति पाप कराती है, लेकिन कभी कभी भोग प्रवृत्ति नहीं होती लेकिन वो होता है पाप, तो चाहे जान से करिए चाहे अजान से करिए, कृष्ण की शरण में रहिए, कृष्ण के दर्शन करते हुए करिए, तो चांस है कि आप बच जाओगे। तो कृष्ण को भूलकर पुण्य भी करेंगे ना अंततः पाप में हो जाएगा, ये भक्ति का साइंस है। कई पुण्यशाली लोगों को आप देखिए, पुण्य के बल पर और धन और पद प्राप्त करते और अंततः वो पाप में हजारों गुना होके हो जाता है, लेकिन भगवान कृष्ण की शरण में जो है चाहे फिर वो कैसे भी है अमृत उसे ही मिलेगा, श्रयणा न दैत्या, सुर असुर गणा हेतु कर्म हित सब एक ही था दोनों का, एक बूंद अमृत मिला नहीं उन लोगों को, मेहनत करके मर गए सब। क्योंकि श्रयणा न एव दैत्या, सुखदेव जी कहते कि शरण में नहीं थे बस। और ये जो दैव रोग है उनको भी, वो कोई भक्ति के लिए समुद्र मंथन नहीं कर रहे थे, उसकी कोई निष्काम भक्ति थोड़ी है देव लोगों की, फिर भी सुरक्षा हो गई, रक्षा हो गई। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण की शरण में है, विष्णु की। ये गुण है सबसे बड़ा, ये इससे मिलता है। और ताली पीटते हुए जा रहे हैं, अरे चलो चलो हंसते हुए, जैसे पिकनिक में जा रहे हैं वैसे, जैसे कोई लोग हम लोग जाते हैं, बच्चे लोगों आप देख सकते हो, समझ सकते हो। ताली क्यों पीट रहे? सनातन गोस्वामी कहते हैं असुर के मुख में जा रहे पाप में, ये हम लोग भी ऐसे ही ताली पीट पीट के पाप में। ये दुनिया के लोग देखो पिक्चर के थिएटर में जाते तो कैसे जाते, अरे अरे 3 कलाक बिगड़ेंगे, भेजा खराब होगा, ऐसे थोड़ी जाते, अरे चलो चलो नया भी चलो, ऐसे जाते हैं वो लोग। उनको पता नहीं है वो पाप करने जा रहे, वासना को हृदय में काम प्रकट करके आएंगे, लेकिन वो कैसे जाते हैं? हंसते हुए, ताली पीटते हुए, मूर्ख लोग जाते हैं कि नहीं? आप देखिए, आप देख सकते, कोई भी भौतिक प्रवृत्ति में जिसकी भी अभिनिवेश है, रुचि है, वो तो अच्छा समझ कर ही करते हैं ना, होता है पाप। बच्चे भी ऐसे जा रहे हैं, लेकिन हाँ गुण यहां है कि मुख दर्शन करके जा रहे हैं, दूसरा विश्वास है कि कृष्ण है ना। इन लोगों में यही कमी है, ये लोग भी पाप में ही जा रहे हैं, लेकिन कृष्ण का दर्शन नहीं, ना शरण है और ना विश्वास है। हमको ये प्रेरणा मिलती है कि हमें भी थोड़ा बहुत पाप प्रवृत्ति बचा है, लेकिन ये विधि सीख लेना है, ये भक्ति ये करते हुए करेंगे तो अवश्य रखते, क्योंकि स्वल्पमति धर्मस्य भगवत गीता का बात है। कृष्ण कहते त्रायते महतो भया, स्वल्प मतलब केवल दर्शन करके गया और कुछ नहीं किया, स्वल्प धर्म कर लिया, जा रहा था यहां से टाइम ट्रेन लेट था इसलिए यहां आया। कुछ लोग भगत हो ना, हम भी कभी कभी प्रोग्राम में जाते यहां से निकलते, आप लोग भी पता होगा टाइम है तो चलो गिरधारी के, ऐसे कोई रुचि नहीं, कोई कोई इसके लिए नहीं आया है, लेकिन यहां से निकल रहे हैं और वहां टाइम है तो चलो अंदर चप्पल निकाल के आते हैं। इसको सुकृत कहते हैं, भले उसको रुचि भी नहीं लेकिन स्वल्प भी धर्म से हो गया ये, और अब भगवान के हाथ में चला जाता है पूरा हवाला कि अब ये तो मेरे पास, मेरी शरण होके मुझे देख कर जा रहा है, अभी मुझे उसका उद्धार करना पड़ेगा। रामायण की कथा आप जानते ना, लंका जी लंका में प्रवेश करते हुए श्री हनुमान जी महाराज को उस लंकिनी ने रोका, जहां लगी चोर मोर आहारा, चोर जितने हैं मेरे आहार नाश्ता बनते तो तू चोरी करने चोर की तरह जा रहा है, छोटे बन के जा रहे थे ना लंका में हनुमान, तो बोले चोर जितने चोर है वो मेरा ब्रेकफास्ट है, मैं यहां की अध्यक्ष हूं चौकीदार हूं। तो हनुमान जी ने कहा चोर है तो रावण तो सबसे बड़ा चोर है, तो पहले उसको खाना चाहिए तुमको, मेरे को क्यों खा रही है? चोरी तेरे नाम से, रावण को वो भी चोरी करके गया ना सीता के, इसी से यही से गया ना लंका में। हे बकवास मत करो, प्रवचन मत दो, ऐसे ही होते हैं वक्ताओं का हालत पाखंडी होगा, जब अपने ऊपर बात आती है तो पर उपदेश कुशल बहुत, दूसरों को उपदेश देना तो व्यास के अवतार हो जाते हैं लोग, लेकिन जीवन में आचरण की बात हो तो नंबर जीरो। हनुमान जी ने एक मुक्का लगाया उल्टे हाथ का और ब्रह्मा जी का वरदान याद आ गया कि जब वानर के मुख से मार खाएगी ना तब तो इस नौकरी से छूटेगी और रावण का अंत भी होगा। तब हनुमान जी को प्रणाम करते हुए लंकिनी कहती है, अब तो हनुमान जी का हाथ पड़ा तो बुद्धि शुद्ध हो गया ना, नहीं तो बोलोगे आप ये लंकिनी का प्रवचन क्यों सुना रहे हो हमको, वो थोड़ी धर्म बोलती है। अरे भाई धर्म वेता दास्य भक्ति के आचार्य, हनुमान का हाथ पड़ा है, भेजा साफ हो गया उसका। भक्त की एक बात भी हृदय में जाती है ना, मगज में, मगज साफ हो जाता है, तो हाथ भी पड़ा है भाई, महाप्रसाद मिला हनुमान जी का, और श्रीवास का महाप्रसाद रथ यात्रा में हरिचंदन को मिला था, प्रताप रुद्र के सेवक को। किस किस को ये प्रसाद मिला सब याद रखना चाहिए। तो बुद्धि शुद्ध हो गया, तब वो कहती है कि ठीक है हनुमान जी, आप लंका जैसे असुर की नगरी में, भयानक नगरी में आप प्रवेश तो करने जा रहे, भक्ति के लिए जा रहे, सीता को ढूंढने जा रहे ना, सीता ही तो भक्ति, वो अलादिनी शक्ति का विलास है ना, लेकिन एक काम, एक बात मैसेज देना चाहती हूँ। हनुमान जी को क्या मैसेज देना था, लेकिन वो तो अपना हनुमान जी के द्वारा मानव समाज के लिए एक बड़ा सुंदर सिद्धांत दे गई लंकिनी। प्रवेशी नगर की जे सब काजा, हृदय राखी हो कौशलपुर राजा। हनुमान जी आप जाइए नगर में, कोई बात नहीं, प्रवेशी नगर वंशा में प्रवेश करिए, कीजिए सब काज, अपना काम भी करिए, लेकिन एक बात याद रखिए, हृदय राखी हो कौशलपुर राजा, हृदय में हमेशा राम को याद रखिएगा, विनाशाय च दुष्कृतम, तुम्हारा कोई बाल विवाह करें। हमको एक संदेश दिया जा रहा है कि आप जाइए अपने संसार के कर्म में, कर्तव्य करने के लिए जाना पड़ रहा है, लेकिन भगवान को याद साथ में रखकर, भगवान नाम को साथ में रखकर, भगवान के छवि को हृदय में धारण करके कोई अनिष्ट नहीं कर पाएगा आपको। जो यहां पर भी बच्चे जा रहे हैं, ताली क्यों पीट रहे, सनातन गोस्वामी कहते हैं कि बाल चापल लेना स्वभाव है ना, और बच्चे हैं, बच्चों का काम ये छोटी छोटी बात में खुश हो जाते हैं, ताली पीटते हैं, लेकिन सर्प अर्हणार्था ये व लोक रीति है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जीव है, अगर किसी को शंका है कि साला पाप तो नहीं है ना ये रियल में, वो एकदम मूर्ति बना हुआ था, हिल भी नहीं रहा था, टेचरी लगे ऐसा, लेकिन अगर कोई ऐसा है तो आप लोग कई छोटे जीव बड़े जीव के पास जाते हो, मरा है कि जिंदा उसको देखने के लिए ऐसे करते हो ना, अगर जीवित होगा तो कुछ तो स्खलन होगा, कुछ तो कंपन होगा ना, इसलिए ताली भी पीट रहेगी, अगर सही है ना, मतलब आवाज सुन के नहीं तो, अगर असली होगा तो कुछ तो एक्शन लेगा, कुछ तो आंखें खोलेगा या कुछ तो हिलेगा, तो इसलिए शायद, या तो बच्चों का स्वभाव है ताली पीटना, या तो फिर इसलिए ताली पीट रहे हैं क्योंकि जब वो बच्चे खेलते हैं मस्ती में होते हैं तो कृष्ण दूर खड़े थे, बच्चे लोग सखा वत्सल के साथ जब अंदर जा रहे हैं उसके मुख में तो कृष्ण तो दूर खड़े थे, तो कृष्ण बोले हे आजा आजा, चलो जाते हैं अंदर, कृष्ण सोच रहे देख रहे और ये बच्चे सब ताली पीटते और कृष्ण को देखते हुए वृक्ष हसन करता ने यू हंसते हुए ताली पीट रहे, आग के मुख में प्रवेश कर गए। प्रवेश करते हुए क्या बात कर रहे, सुखदेव जी 25वें श्लोक में कहते इत्थम मिथ तत्य तत्ज्ञ भाषितम श्रोत्रम विचिंत्यम अमृषा मृषायते, श्रोत्रम सुन रहे हैं, विचिंत्यम चिंतन कर रहे हैं, और तत्ज्ञ तत्व नहीं जानते बच्चे, और भाषित जानते नहीं और बोल रहे हैं, इसलिए तो बच्चे हैं, हम लोग भी ऐसा ही करते जानते नहीं लेकिन वक्ता बने बैठे तत्ज्ञ अतत्ज्ञ अपि भाषितम उसको लंबी बुद्धि नहीं है, वो जानते नहीं कि असली सर्प है ये अघासुर है, कृष्ण तो जानते, इसलिए सुखदेव जी कहते रक्षो विज्ञाय अखिल भूत स्थित, ये राक्षस है इस बात को अखिल भूत सबके हृदय में रहने वाले अंतर्यामी हृदय अर्जुन तिष्ठति श्री कृष्ण खड़े है और वो देख रहे हैं, और ये लोग बोल रहे हैं कि अरे वाह आज तो आनंद हो गया, पता नहीं ये कौन सा एलिफेंटा गुफा कहां से आ गया, बिना बिना पैसे के जाने मिल रहा है, वृंदावन कितना अच्छा बंद मिला है कृष्ण की कृपा से, कोई बिना चार्ज के गुफा में प्रवेश मिल रहा नहीं, तो एंट्री टिकट भी तो होता है ना, कोई टिकट नहीं कुछ नहीं, और अपने नाश्ता के साथ जा रहे, एक टीकाकार तो लिखते हैं कि वो अघासुर के बड़े दांत थे तो अपने नाश्ता का ठेला उधर ही टिंगा देगा, यार रख दो थोड़ी देर के लिए उधर ही तो दांत में अपना टिंगा रहे कि झोला कहीं कहीं होता है ना, हम लोग कहीं माला झोली टिंगा लेते या कहीं इधर रख दो, क्योंकि वहां पर जैसे आप लोग यहां जाते हो वाटर पार्क यहां कहीं वहां पर लॉकर तो होता है नहीं था, लॉकर में रख दिया जाता है आपका मोबाइल कुछ सामान, सखा लोग के मोबाइल तो नहीं था लेकिन कुछ तो वो नाश्ता तो था, कुछ तो था अपना सामग्री, बोले अंदर जाना है तो इधर ही रख दो इसको, अरे ये दुर्गंध तो आ रही है, मरा हुआ सांप की आ रही है, सखा बोला कि नहीं ये मरे हुए सांप की दुर्गंध, क्योंकि वो अजगर भारी भारी सब खाया था ना, अजगर आप जानते हैं ना वो सब सब प्राणियों को खा लेता है, बड़े बड़े राइनों को भी वो खा जाता है अजगर, गेंडे को भी खा जाता है, गेंडे की चामड़ी देखे अब सबसे कठोर राइनों का होता है, लेकिन अजगर उसको भी उगल जाता है निगल जाता है, बड़े बड़े अजगर, और ये तो महासुर था ना, इसके विषय में क्या कहना, तो सब मरे हुए प्राणी अंदर जो पचाया है उसकी दुर्गंध भयानक आती थी, तो दूसरा सखा बोला रे रे ये गुफाओं में ऐसा ही होता है, कुछ लोग पहले वहां थोड़ी सफाई होता है सरकारी रोड पर भी नहीं होता म्युनिसिपैलिटी का, तो गुफा में कहां से होगा, चलो चलो थोड़ा जैसे थोड़ा सहन कर लो आगे जाके कुछ अच्छा आएगा, चलो ऐसे बात करते हुए जा रहे दुर्गंध आ रहा है उसको भी चलो लेट गो करते हुए देखा देखा चलो देख देखिए, लेकिन भगवान देख रहे हैं, तब क्या किया कृष्ण ने, सुखदेव जी कहते हैं स्वानाम, वो अपने है स्वानाम, कृष्ण सोच रहे कि ये मेरे सखा है मेरे है मेरे अपने है ब्रजवासी है, निरोध धुम भगवान मनोदधे, मुझे इसको रोकना चाहिए। भगवान अपि सर्वशक्ति ऐश्वर्य संपन्नम अपि सर्वज्ञ अपि सर्व सामर्थ्य अपि, भगवान शब्द से कई विशेष कई सद्गुण सद्गुण प्रकट कर दिए है सुखदेव जी ने। और मनोदधु अपने मन में वो संकल्प किए, क्या निरोधधु मुझे अपने को रोकना चाहिए। वास्तव में आप सबको अपना मानते हो तो उसको माया में पाप में जाने से रोकिए, साधु यही करता है। माया मृगम दैव शीतमन्वधावत वंदे महापुरुष ते चरणा, महाप्रभु ने यही कहा नित्यानंद को, जाइए आप सबको बोलिए कृष्ण बोलो। प्रभुपाद यही किए, भक्त का यही स्वभाव होता है ना, भगवान का नेचर भक्त में आता है। जिसका आप स्मरण करते हो, जिसको आप इष्ट मानते हो, जिसको आप हृदय में रखते हो, उसका स्वभाव आप में प्रवेश करता है। और भक्त लोग भगवान के स्वभाव को धारण करते हो, स्वभाव है करुणा दया। और इसलिए वो भी मन में यही सोचते कैसे इन लोगों को मैं रोकूं पाप से, इस भोग वासना से। भगवान भी सोच रहे स्वानाम मेरे अपने हैं, निरोध धूम इसको मुझे रोकना चाहिए। मनोदधु मन में विचार किए कि मैं इसको रोकता हूं, लेकिन जब ऐसा सोच रहे तावत प्रविष्टान असुरो उदरांतर। 26वां श्लोक, भगवान अभी सोच रहे तावत तब तक तो असुरो उदरांतरम प्रविष्टान, सभी सखा असुर के उदर में चले गए। भगवान रोक रहे कर रहे, तब तो अंत वाला भी गए, है जाते कम कम वो भी आ जा तुम भी आ जा, और ये जा रहे। भगवान ने कहा अरे बाप, परम न गिरना, लेकिन वो गिरना वो अजगर जो था, लेकिन सुखदेव जी कहते कि प्रविष्टान असुरान उदरान विक्षम, भगवान कृष्ण ने देखा कि सब चले गए, अभी रोको रोको तब तक वो चले गए। तब क्या कर, कृष्ण सोचे कि शायद सब गए अब, क्योंकि अजगर तो चूर्ण बना देगा। परम न गिरना शिशव सवत्सा, बछड़े भी गए सवत्सा शिशव गोप शिशु सब गए अंदर, पर न गिरना अजगर उसको निगल तो गया लेकिन चूर्ण नहीं किया, चबाया नहीं। अर्जुन अजगर भी चबाता है भक्तों, अब याद अजगर अजगर की स्टाइल अलग होती है खाने की। अजगर क्या करता है, कोई भी शिकार को अंदर प्रवेश करता है तो पहले वो अपनी लाल से अपने वायु के फोर्स से अंदर ढकेलता है उस शिकार को। दांत होते हैं बड़े बड़े अजगरों के, लेकिन उसको चबाता नहीं, वो अंदर अंदर सीधा पहले निकलता है, निकल जाता है, और फिर अपने शरीर को ऐसे वो मरोड़ता है कि अंदर जो गया है प्राणी, कोई भी हाथी गया है या गेंडा या कुछ भी, तो उसकी उसकी हड्डी बड़ी मजबूत होती है, लेकिन उसको भी वो चकना चूर कर देता है। इसकी चमड़ी में वो ताकत है उसकी मसल्स में कि अंदर गए हुए शिकार को वो चूर्ण करा देता है। जैसे मिक्सर में कोई आप चटनी बनाओ ऐसे हड्डी का चूर्ण बना देता है ये। तो भगवान सोच रहे कि सब गए लेकिन न गिरना, लेकिन अजगर निकल वो मुंह ऐसे, क्योंकि जब बंद करेगा ना तब ये काम करेगा, लेकिन मुंह अभी बंद नहीं किया, अभी उसको खोला हुआ है। मुंह क्यों खोला, सब तो अंदर चले गए। प्रतीक्षमानम बकारी आविशन, वो प्रतीक्षा कर रहा है कि बकारी जो मेरा मेरे भाई का शत्रु है वो अभी न आविशन, वो अभी आया, जो मेन सरदार है वो तो बाहर खड़ा है, उसके लिए वो वेट कर रहा है कि ये सब तो गए, अभी इसको मसल दूंगा लेकिन अभी नहीं मसलना है। और ये सखा क्या हो गए, टीका में लिखा है चक्रवर्ती बार कहते अंदर जाते ही सब मूर्छे मर गए, क्योंकि उनकी दुर्गंध इतनी, लेकिन वो शरीर एजेटिस था, वो चोर नहीं बनाया था, लेकिन अंदर जाते ही वो तो सब श्वास अंदर आ गया और बास इतनी और जहर का प्रभाव इतना कि कोई उठ नहीं पाया, और ये मुंह फाड़े बैठा है एकदम ऐसे ही। क्यों, क्योंकि प्रतीक्षा कर रहा है कि बकारी नविशन, मेरा मेन शत्रु भी नहीं आया है मेरे भाई को। और हत स्वाकांतम स्मरणे न रक्षता, और अपने भाई को याद करने लगा, मेरा भाई कितना अच्छा था, बकास बेचारा बगला बन के कितना बड़ा बड़ा काम करता था, कंस के लिए कितने ब्राह्मणों को मारता था, कितने यज्ञ को ध्वंस करता था, कितनी बच्ची स्त्रियों को खा जाता था, इतना पवित्र मेरा भाई ये मार डाला उसको। सोच रहा है बेटा, और मेरी बहन कितनी सुंदर लक्ष्मी जैसी, उसके कर्म भी कितने अच्छे अच्छे थे, जिसको भी देखती थी उसको मार देती थी, बच्चों का जूस पीती थी, इतनी मेरी सुंदर बहन और ये मार दिया उसको, कब आएगा अंदर। स्वकान स्मरण है ना, ये स्मरण कर रहा है, तो वो तो ऐसे ही स्मरण करेगा ना, वो थोड़ी अच्छा स्मरण करेगा, लेकिन उनके गुण जो थे उसको दुर्गुण उसको गुण लग रहे थे, और ये अभी तक आया नहीं। तान्विक्ष कृष्णम जब कृष्ण ने देखा कि सब सखा चले गए, सकला भय प्रदो, 27 नंबर श्लोक, सकल पूरे दुनिया को अभय प्रदान करने वाले, श्री कृष्ण के लिए शब्द दिया गया सुखदेव जी ने, तान वीक्ष उसको देखा, सखाओं को अजगर के मुख में प्रवेश करते देखा और अजगर को मुंह फाड़े हुए मेरा वेट करते हुए देखा, किसने देखा, सकल अभय प्रद, जो सब भज हो रे मन जन अभय चरणार, सबको अभय देने वाले श्री कृष्ण ने देखा, तान वीक्षम क्या देखा, सुखदेव जी कहते अनन्य नाथान जो अनन्य नाथ, मैं ही एकमात्र इनका नाथ हूं, मेरे सखा मेरे अलावा किसी को न जानते न मानते, और आज जो मैं जिसका नाथ हूं जो को अभय देने वाला उसको ये निगल गया, सो करा मेरे हाथ से मेरे सखा चले गए, दिनाश मृत्यु जठराग्नि ग्रासान, जैसे कोई महालपट भयंकर आग हो और उसमें घास का तिनका पड़े तो कितना टाइम लगेगा उसको जलने में, एक प्रचंड आग हो इसमें घास के तिनके की तरह ये मेरे निर्दोष भोले प्यारे गोपालन करने वाले प्रेमी सखा चले गए, ऋणार्दितो कृपा से उनका हृदय मचल गया कृष्ण का, दिष्ट कृतेन विस्मितम, और कृष्ण भी आश्चर्य में हो गए कि मैं खड़ा हूं और ये कैसे हो गया, मेरा नाम लेने से भी ऐसा नहीं होता कि कोई पाप नहीं कर पाता, पाप के मुख में नहीं जा सकता, वो मर नहीं सकता, और मैं साक्षात खड़ा हूं, हाउ कैन पॉसिबल, ये कैसे हो गया, इसी भी चिंतन भगवान सोच रहे हैं, चतुर्थ बात देते भगवान होकर ऐसा सोच रहे हैं, भगवान पर भी योग माया का प्रभाव है, वो एकदम मनुष्य के बच्चे की तरह गोपाल की तरह सोच रहे हैं, नहीं तो संकल्प मात्र से अगस्त वही रहते रहते हो जाता, सब लीला करनी है भगवान को, मारना होता तो संकल्प से मार देते, सखाओं को पहले ही बीच में जाकर रोक देते कि मत जाओ अंदर, उसकी तो उसकी शक्ति से श्वास पूरा रुक जाता है ब्रह्मांड, यस्या गया ब्रह्मति संवृत काल चक्रो, सूर्य उनकी आज्ञा से चलता है, तो क्या रोक नहीं सकते सखा को, सब कुछ करने में समर्थ है लेकिन उसकी योग माया शक्ति के प्रभाव में उसको लीला करनी है, और इसीलिए किमत्र कृत्यम, किमत्र अस्मिन संकटे अहम किमत्र, मैं क्या करूं, कृष्ण एक मनुष्य की तरह, एक बच्चे की तरह, एक गोपाल की तरह नंद नंदन समझते हुए, अपने सखा का अपने को मित्र समझते हुए कि हाय राम, इमत्र अत्र मतलब यहां इस संकट समय किम कृत्यम, मैं क्या करूं, खलस्य जीवनम न स्यात्, क्या इस खल को अभी मार दूं, या सताम अमीशाम विहिंसनम, और मेरे सखाओं को मेरे भक्तों को मैं कैसे रक्षा करूं, कथम द्वयस्यात्, ये दोनों एक साथ मैं कैसे करूं, संविचिंत्य सम्यक चिंतन करने लगे, और ऐसा सोचकर भगवान की शक्ति ने तुरंत उसको प्रेरित किया कि मैं दोनों काम एक साथ करूं, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, एक तीर पे दोनों काम, और ऐसा सोचकर ज्ञात्वा जानकर आविशत वो भी चले गए तुंडम मुख, तुंडम मतलब मुख, कौन चले गए मुख में, ज्ञात्वा विशन तुंडम अशेष दृगहरी, अशेष दृग जिनकी दृष्टि अनलिमिटेड है, अशेष जो भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं, सबका सर्वत्र है सर्वदा है और सर्व सामर्थ्य है, वे अशेष दृग, और कौन, हरि, आश्रित आरती हरणशील स्वभावा अस्य स हरि, जो उसकी शरण में आ जाए उनके दुख को दूर करना, उनकी रक्षा करना, उनके पाप ताप कष्ट को हर लेना, ये जिनका स्वभाव है वे हरि, प्राविशत आविशत तुंडम मुख में चले गए। अब अजगर ने देखा कि मेरा शत्रु आ गया है, अब वो मुख बंद करेगा, लेकिन अभी मुख खुला है कल बंद होगा, अभी तो भगवान आविशत भगवान मुख में चले गए, मुख बंद हुआ ये वर्णन नहीं है, तुंडम हरि चले गए, हरि अरे भाई हरि भक्तों का दुख नहीं है, इसका क्या करेंगे, अघासुर का भी पाप हर लेंगे, उसको भी मुक्ति दे देंगे, क्योंकि इनका काम ये हरना, सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे मन, हरि का काम है कि सारे जीवों का अमंगल हर लेते हैं, चाहे फिर वो सुर हो चाहे असुर हो, किसी को मारकर किसी को ऐसे उनका काम ये तारना है, वो किसी का हरि कृष्ण का किसी भी असुरों का भी अमंगल नहीं करते, क्योंकि वो हरि है, और अपने भक्तों का तो ताप दुख हष्ट कर देंगे, सारे देवता आकाश में खड़े खड़े देख रहे हैं, क्योंकि वेटिंग वो सब युद्ध देख रहे हैं, वो भी बिना टिकट लिए आए हैं लेकिन देख रहे हैं सब आकाश में, क्योंकि सीट तो रिजर्व नहीं, आकाश में थोड़ी टिकट लगता है, अपने अपने विमान में, और सब खुश थे, लेकिन कृष्ण अंदर गए तो वो भी टेंशन में आ जाएंगे, क्या होगा पता नहीं, लास्ट बॉल है, पता नहीं क्या होगा, सिक्स लगेगा कि नहीं, जैसे हमारी भाषा में आप समझा सकते हो। तो सब सारे ऑडियंस चिंता में है, सारा देव समूह, और सुखदेव जी गंगा तट पर इस लीला का गान कर रहे, बड़े मधुर शब्द है, हरि पाप ताप दुख अपने सखा, मतलब पक्का है उसको दुखी होने नहीं देंगे, उसको ताप होने नहीं देंगे, भगवान हरि अंदर प्रवेश कर गए। तो ये है अगासुर लीला। इसी तरह भागवत के श्लोकों का चिंतन विचार श्रवण करना चाहिए, यही इसी में जीव का मंगल है। इसके अलावा जो भी टाइम जाता है वो केवल बर्बादी है। समझिए इस बात को, समय की सार्थकता भगवत लीला चिंतन है। जितने वरदान आशीर्वाद मनुष्यों के द्वारा, भगवान के द्वारा, देवताओं के द्वारा जीव को है, उसमें सबसे बड़ा वरदान, सबसे बड़ा आशीर्वाद यही है कि भगवान के प्रेमी भक्त का संग हो जाए और उनके मुख से सत्संग सुनने मिल जाए। भगवान शिव ने कहा है कि मर्त्यानाम भगवत भक्ति संगस्य मर्त्यानाम किमुत आशीष, भगवान के भक्तों के संग में कीर्तन और कथा हो जाए, इससे बड़ा आशीर्वाद मनुष्य के लिए और कोई नहीं। प्रभुपाद की कृपा से हमें मिल रहा है, इसका हमें आनंद लेना चाहिए और अपने आप को कृष्ण लीला में हमारे मन को, बुद्धि को, वाणी को लगाकर जीवन को सार्थक करना चाहिए। धन्यवाद। आप सभी वैष्णव प्रेम से बैठे सुने, दास को भी आशीर्वाद दीजिए कि मति विष्णु कृष्ण कथा में लगी रहे। इसी के साथ समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम। कृष्ण बकारी है, अब अघारी बनेंगे। अघारी बकारी की जय।